مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، ہمارے پروڈیوسر اسفر امام ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے اس وقت دلی میں ہونے والے پرتشدد ہنگامے، جس میں 10 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہم کچھ دیر میں آپ کی ایک صحافی سے ملاقات کروائیں گے جو اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر یہ ہنگامے جاری ہیں، تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اور اس ایک ایسے وقت میں جب یہ ہنگامے ہو رہے ہیں، خوشائند بات یہ ہے کہ دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں گزشتہ چند ہفتوں سے آرٹ کا ایک پروجیکٹ جاری ہے جو گریفٹی ہے، اور یہ بیڑا اٹھایا ہے ان نوجوان طلبہ و طالبات نے جن میں سے کچھ تشدد کا نشانہ بھی بنے، لیکن وہ اپنے ملک کو جو کہ ایک سیکولر ہندوستان ہے اس کے بارے میں، اس کی جو ایک شناخت ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی شناخت مختلف مذاہب کے لوگوں کی حیثیت سے مانی جائے، اور جو ایک مسئلہ ہے وہاں پر شناختی کارڈ کا، اس پر بھی بات کی جائے۔ تو صدر ٹرمپ کا دورہ بھی اسی وقت عمل میں آیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، پہلے ہم اس پروجیکٹ کے بارے میں جو طلبہ و طالبات کا ہے، ایک جھلک آپ کو سناتے ہیں اسفر صاحب، اگر آپ ایک جھلک ہمیں اس کی ریکارڈنگ سنوا دیجیے، تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔
جب مجھ پہ لاٹھی چارج ہوئی تھی، میں وہاں پر اٹھی، پھر میں نے دیکھا خود کو، میرے فیس پہ بلڈ لگے ہوئے تھے، میرے کپڑوں پہ بلڈ اسٹینس تھے، مجھے پتہ نہیں تھا یہ کس کے بلڈ ہے، اور وہ اتنا ہاریفک مومنٹ تھا کہ میں اپنے سسٹر کو کال کری تھی، اینڈ آئی واز ناٹ ایون ٹو کال اینی ون بیکاز مائی ہینڈ واز شیورنگ فرام دی فیئر۔
جب 15 تاریخ کو ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور کیمپس کے اندر جو بروٹل پولیس کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد ہم لوگ سب بہت زیادہ ٹرامیٹک مائنڈ اسپیس میں تھے، اور کیمپس کے باہر کی جو بھی دیواریں تھیں، ہم لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ پینٹنگس بنائیں گے سی اے اور این آر سی کے ورودھ میں، اور ہم اپنی بات کو آرٹ کے تھرو ایکسپریس کریں گے۔
تو سامعین، یہ کچھ آوازیں تھیں، اور مزید آوازیں ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن سیمی کی آواز آپ نے شروع میں سنی۔ سیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم سیمی۔ سیمی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال سیمی کو آواز نہیں آ رہی میری۔ سیمی آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ سمین میں آپ کو یہ بتا دوں، اس دوران جتنے سیمی کی آواز ہم سن سکیں، کہ ہمارے یہ پروگرام ہمارے فیس بک پر بھی پیش کیا جا رہا ہے، آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اپنے کمنٹس لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا اس پہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے ہی ماہرین آئیں گے، یہ بتا دوں کہ یہ جو فیس بک پر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، نتاشا بھردواج نے بنائی تھی، جو بھارت کی ایک جانی پہچانی فلم میکر ہیں، اور کاروان محبت کے نام سے ان کا پروجیکٹ، ابھی ہم نتاشا سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ کمنٹس کیے ہیں، یہ لگاتے ہی جیسے ہی ہم نے ڈالا تھا ویڈیو نتاشا کا، بے شمار لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے ہم کی اس کوشش سے جو طلبہ و طالبات کر رہے ہیں۔ تو اسفر صاحب، کیا نتاشا آ گئی ہیں ہمارے ساتھ؟ نتاشا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ اچھا نتاشا، تھوڑا سا ہمیں اس کاروان محبت پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے سب سے پہلے۔ تو نتاشا، آواز سیمی، اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کیا نتاشا کی؟ اچھا تو سیمی آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ سیمی کی آواز بھی مجھے نہیں آ رہی پیچھے، اگر آپ لوگ کوشش کریں سیمی کو ہم سے ملوانے کی۔ اور میں کچھ نام پڑھ دوں، رمضان بروہی، فری مسلم فری کشمیر، اس سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر اور پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ شاہ رخ خان نے کیا ہے، اس کے علاوہ گیلیکسی، ٹیپو، اور انہوں نے آپ کو اب آواز آ رہی ہے میری؟ آپ میں سے کسی کو بھی، نتاشا کو یا سیمی کو؟ میرا خیال ہے نہ نتاشا سن سکتی ہیں اور نہ سیمی سن سکتی ہیں۔ अच्छा, तो नताशा चलिए आप थोड़ा सा हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि ये ग्रेफिटी का जो प्रोजेक्ट है, आप तो खुद फिल्म मेकर हैं, आपको कैसा लगा? तो समीन, मैं आपको थोड़ी सी तफसील
जी
बता दूं।
एक्चुअली यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे वापस जाना होगा, तो प्लीज जल्दी करिए।
जी नताशा, मुझे मालूम है कि आपको जल्दी जाना है। आपसे मैं ये कहूँगी कि ये जो एक अलामतें हैं इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इसमें, ये बहुत ही काबिले ज़िक्र हैं, इसलिए कि सारी नेशनलिज्म की अलामतें हैं इसमें। ना किसी अलहदगी का जिक्र है, या ये समझा जाता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्योंकि मुसलमानों का इदारा है तो शायद वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि तमाम अलामतें कौमी हैं, चाहे वो हीरो हों, चाहे तिरंगा हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो कुछ इस बारे में कहिए कि क्या जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो क्या कहते हैं। समिन, हमारी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स में और लाइंस में ख़राबी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो दूसरी जानब हमारे सुनने वाले हैं और हमारे माहिरीन हैं या आर्टिस्ट हैं, उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए आपको हम एक झलक उन आवाज़ों की सुनवाते हैं जो इन पे काम कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इन नौजवानों को किस सूरत हाल से गुजरना पड़ा जिसके बाद ये अमन की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका मुल्क अपनी पुरानी सूरत पर वापस आ जाए। जी असफ़र, सुनवाइए हमें ज़रा।
आइडिया नहीं था कि इतना लंबा ग्रेफिटी हम बना पाएंगे। हमने
मैम
एक ग्रेफिटी से शुरू की
जो
और हमारे पास जो बेसिक चीजें थी वो हमने करीब करीब पहुंचे और हमने करना शुरू किया। कई बार यहाँ से लोग गुजरते थे हमें खाने के लिए सामान देके चले जाते थे कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ खा लीजिए। तो एज सच फंडिंग का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं रहा है, लोग ऐसे ही 200-400 देते गए हैं और हमने बनाना शुरू किया है।
हमारी टीम में जामिया के स्टूडेंट्स भी हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब हमारे साथ हैं। जो लोकल लोग यहाँ पे हैं वो भी हमारे साथ हैं।
हर वॉल पे कुछ ना कुछ लिखा है, इंग्लिश एंड हिंदी। उर्दू वॉज नॉट लाइक, नहीं दिख रहा था हमें, कैलीग्राफी नहीं दिख रही थी कहीं पे। वी थॉट कि चलो हम कुछ अपना पेंट करते हैं, तो बस कर दिया।
उस दीवार पे लिखा है वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे।
कहीं भी जाते हैं, मतलब अगर फ्रेंड्स भी मिलते हैं तो जैसे कि ये क्यों पहनते हो हिजाब, लाइक हमेशा बहुत अप्रेस समझा जाता है इसे, कि इसे हटाओ, इससे क्या हो जाना है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं आ रही थी डेली तो मैंने देखा सबके हाथ में प्ला कार्ड्स था या फिर कुछ ना कुछ लोग लिख करके आ रहे थे। सो आई थॉट कि मैं कहाँ लिखूँ, और जब लिख के जा रही हूँ लाइक मैंने सोचा जो मैं पहन ली उसी को कुछ वो मजाज का शेर याद आ जाता है, अपने आँचल को परचम बना लेती तो अच्छा था, इट्स सॉर्ट ऑफ दैट। तो मैंने अपने हिजाब पे ही लिखना और शाल पे लिखना शुरू कर दिया, एंड हियर आई एम।
मतलब आई हैव स्टार्टेड विद द वर्ड आज़ादी, एंड देन बोल के लब आज़ाद है तेरे, फिर जुल्म की रात को, जेल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मतलब फिर डेली लेवल पे मैं कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं कैलीग्राफी करती गई और मैं उसे पहन करके
जो पेंटिंग हमने यहाँ पे की है गेट नंबर 3 जामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, ये ग्रैफिटी उन तीन बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली जो 15 दिसंबर 2019 को पुलिस ब्रुटैलिटी में जो सिविल इंजर्ड हुए।
ये हमारा क्लासमेट है तंजील और ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये बास्केटबॉल प्लेयर है हम जामिया से, जिसके हाथ और फिंगर्स तक फ्रैक्चर हो गए थे क्योंकि पुलिस इन्हें उठा के ले गई थी डिटेन करके, जबकि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे। जब ये मार रहे थे पुलिस वाले इन्हें, तो इन्होंने बोला अल्लाह मुझे बचा, तो जैसे ही ये सुना उन्होंने तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो तू पाकिस्तानी है, चल उठा इसे।
फॉर मी दीज आर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका फ्यूचर एक सेंसलेस, मतलब एक सेंसलेस अटैक ही कह सकते हैं, ब्रूटल अटैक की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। संजीव का राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों फ्रैक्चर्ड है एंड एज वी ऑल नो ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर।
तो ये थी कुछ आवाज़ें और आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा। आलोक साहब भी दिल्ली से हमारे साथ हैं इस वक्त और जाने पहचाने सहाफ़ी हैं। आलोक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
बिल्कुल आ रही है।
थोड़ा सा अगर आप इस वक्त की दिल्ली की सिचुएशन के बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की जो काफ़ी जाने पहचाने आपकी तरह जर्नलिस्ट थे, वो भाग रहे थे, कह रहे थे कि हमें बच्चे को पिक करना है, ये इस वक्त हम अपने घर वालों के लोगों को उठा लें, तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली की सूरत क्या है इस वक्त?
देखिए, दिल्ली में जो ये पिछले 2-3 महीने से हो रहा है, ये एक प्रायोजित ढंग से हो रहा है और ये एग्रीवेट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद
जी।
22 तारीख से जाफराबाद में ये मामला शुरू हुआ सुबह 7:30 बजे से
जी।
वहां पर महिलाओं को आगे करके अभी ये आज इस बार की प्रदर्शन और रैलियों में देखा जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों को आगे कर रहे हैं। और मैंने भी बहुत तबके के लोगों से बात की जो मुसलमान साथी हैं और संख्यक लोग हैं, तो उनमें से ज्यादातर ने यही कहा कि आप लोग हमको इंडिया से भगा रहे हो, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मतलब उनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, उनको किसी ने मन में भर दिया है कि उनको इंडिया से भगाया जा रहा है।
अच्छा, लेकिन
जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं ऊपर के तबके के, जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से
जी, लेकिन खुशी की बात यह है लोग जी, जैसा कि भारत की एक शनाख्त भी एक सेकुलर मुल्क की, एक ऐसा मुल्क जिसमें जमहूरियत का तसलसल है, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, जो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि अमन के लिए है, और उनका तमाम पैगाम यह, उन्होंने जो ग्रेफिटी बनाई है वो कहते हैं कि एक तरह का न्यूज़पेपर है जो हालात के बारे में। आप हमारे साथ रहिए, मैं सीमी से कुछ बात करूँगी जो कि आर्टिस्टों में शामिल हैं। सीमी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थोड़ी सी में कनेक्शन की गड़बड़ थी तो हम आपसे बात नहीं कर सके। आप मुझे बताइए कि जैसा कि अभी आलोक जी ने बात की, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट किस हद तक इस चीज का इजाला करता है, एक यानी किसी एक ग्रुप को अलग करने से, या किसी ये कि सिर्फ एक के खिलाफ है? क्योंकि मैंने देखा कि आपके आर्टिस्टों में हर मजहब के लोग शामिल हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि और भी लोग हैं।
बल्कि बाकी जो लोकल्स हैं और कई लोग हैं जो बहुत दूर से इंडिया से आए हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल हु वर्क एज फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग टू वर्क विद अस।
अच्छा, तो इसमें जो लोग गुजरते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग गुजर रहे हैं पास से, तो क्या उनके कमेंट्स क्या होते हैं आप लोगों के इस प्रोजेक्ट पे?
लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम इतना क्रिएटिवली को काम कर रहे हैं
जी।
लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
अच्छा, तो थोड़ा सा आलोक जी, अगर आपकी नज़र आप गए गुजरे हों वहाँ से, उस इलाके से, और आपने ये प्रोजेक्ट देखा, मैं आपकी भी थोड़ी सी राय जानना चाहूँगी। और जो अब तक के मुजाहरे हुए जो नौजवानों की जानिब से, उसमें एक चीज़ गालिब नज़र आती है कि उन्होंने कोई ऐसा सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जो कि अलहदगी की अलामत हो, या ये हो कि वो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, बल्कि तिरंगा या जो लीडर्स हैं ऐसे जो कि सेकुलरिज्म के हामी लीडर्स हैं उनको, या इंडिया का आइन, तो थोड़ा सा अगर आप तालिब इल्मों के और नौजवानों के नुक्ते नजर से बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट है इसमें आपको क्या रंग दिखता है? नहीं, आलोक जी से, ये सवाल मेरा आलोक जी से है। अगर आलोक जी असफर, क्या आलोक जी भी चले गए? मुझे तो उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही। तो जी अलोक जी
और ये एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं,
जी
लेकिन जो पीछे के लोग हैं,
जी
अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ।
जी जी
शाहीन बाग में जब वार्ताकार गए तो वहां पर इतनी बेहुदा ढंग की बातें की गई, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को अंग्रेजों की औलाद कहा गया, और उसके बाद अग्रिम पंक्ति में जो चार पांच महिलाएं थी
जी
सिर्फ पुलिस से बात वार्ता करने का अधिकार दिया गया, और जो महिलाएं थी तो
जी मेरा ख्याल है कि इनका टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया।
मुझे नहीं मालूम था कि वो क्यों बैठी हुई है वहां पे।
अच्छा अच्छा तो लेकिन अभी तक क्या कोशिश क्या हो रही है, मतलब किस तरह आपको नजर आ रहा है कि इसको किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए इसमें इसमें जो प्रबुद्ध नागरिक है देश के, जिन्होंने आज 70 वर्ष तक यहाँ पर सौहार्द कायम किया हुआ है, इनको आगे बढ़ के आना होगा और समाज के उस तबके के अंदर जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये CAA आपके को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाने जा रहा है
जी।
ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से अंदर घुस आए हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पाकिस्तान नहीं गए 1947 के बाद, उन पर किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई होने का प्रावधान इस नियम कानून में नहीं है। ये भड़काने वाले लोग हैं, ये राजनीतिक दल के लोग हैं जो लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इस सब कारण से देश का सौहार्द बिगड़ गया है। आज दिल्ली के हालात बहुत ही गंभीर है
जी।
दिल्ली में इतना डर का माहौल हो गया है कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकती है कि कहां मामला भड़क जाए, कहां दंगा भड़क जाए, कहां पर देखिए 10 लोग अभी तक मारे हैं, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट है,
और जख्मी तो
ज्यादा भी लोग मरे हों
जी, और 100 से ज्यादा तो जख्मी है, उनका भी पता नहीं कि उनकी क्या सूरत हाल है। तो
जो जख्मी है उसमें की हालत बहुत गंभीर है।
अच्छा मैं थोड़ी सी एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं अपने सुनने वालों के लिए। इसकी वजह ये है कि हमारे प्रोग्राम में काफ़ी, हम आमतौर से 10 मिनट का फेसबुक करते हैं, लेकिन इस वजह से कि आप में से बहुत से लोग नहीं सुन सके थे तो आज हमने फेसबुक को थोड़ा तवील रखा है। तो अब हमारे फेसबुक पर हमारी नशरियात ख़त्म होती है, लेकिन रेडियो पर आप सुनते रहेंगे और उसके बाद वेबसाइट पर भी सुन सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया यास्मीन का जो हमारा फेसबुक देख रही थी। अब हाँ जी आलोक जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि इसकी जड़ें ज़रा दूर तक हैं, जैसे आसाम में खासतौर पे जहाँ पे कई लाख लोग मुतासिर हुए, ये जो मसला है कि लोगों किन लोगों को शहरी माना जाएगा और जिनको नहीं, तो ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो एक महदूद पैमाने पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी तो बात है कि जो लोग कई नस्लों से आबाद हैं इंडिया में, उनको सिर्फ इसलिए इंडिया का शहरी ना होने दिया जाए क्योंकि जो ट्रंप साहब की आमद पर मुजाहरे हुए वो बेशतर इस कानून के खिलाफ थे। जी आलोक जी, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो एक बड़ा मसला है जो कि लोगों की शनाख्त का मसला है, लोगों को शहरी मानने का, तो वो उसके लिए क्या आपको लगता है गवर्नमेंट क्या कर रही है और ये क्या होने का इम्कान है या वो ही रहेगा जो कि फैसला हो गया?
देखिए शुरू में जब ये मामला आया था तो सबसे ज्यादा भड़का था मामला आसाम में।
जी हाँ बिल्कुल,
और आसाम में इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है
जी।
बहुत से इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी लोग बहुतायत में घुसे हुए हैं, लेकिन इस सब पर पूरी तरीके से निगरानी करके छानबीन करके लोगों को शिनाख्त किया जाएगा और तभी उसके बाद पर कुछ कार्रवाई होगी। अगर कोई ये समझता है कि इस तरीके के दंगे करके, इस तरीके का प्रदर्शन करके ये CAA को हटवा लेंगे तो इस गलतफहमी में है, किसी भी सूरत में CAA नहीं हटाया जाएगा।
अच्छा अगर हम इसको ब्रॉडर
देश की सुरक्षा से संबंधित है
जी।
ये देश की आबादी से संबंधित है, इस पर कार्रवाई होनी ही है, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है या किसी और भी धर्म के लोग हैं जो वर्षों वर्षों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उन पर किसी तरीके का कोई कार्रवाई होने की कहीं से दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है।
अच्छा, तो अब हम एक हमारे साथ, जी जी आपने फरमाया, नहीं मैं एक
बिहार में था तो वहाँ पर निकला,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे
तीन चार आदमी
जी आलोक जी, मैं यहाँ पे हमारी एक और मेहमान शामिल हुई हैं, मैं उनका मुतारुफ करवा दूँ, आरती टीकू सिंह साहिबा हैं, जो कि जी मैं ये चाह रही हूँ कि अब हम इसको सदर ट्रंप का जो दौरा है इसके खित्ते पर जो असरात हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए, आपकी राय भी मैं लेना चाहूंगी। लेकिन आरती टीकू सिंह, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। मुझे ये बताइए कि जो सदर ट्रंप का दौरा हुआ है कि काफी गैर मुतवक्को हालात में हुआ है, यानी अब तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट का दौरा हुआ हो और सूरत हाल पुर अमन ना हो, तो इस वक्त खासतौर पर दारुल हुकूमत में जो सूरत थी, तो आप ये बताइए कि अब इसके जो मकासद थे दौरे के वो पूरे हुए या इस पूरे हंगामे में वो कहीं खो गए? आरती साहब, आरती की आवाज नहीं आ रही मुझे, अगर वो बोल रही हैं तो जी। आलोक जी अगर आप भी इसका आप ही जवाब दे दें। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने इन दोनों मेहमानों से बात करें, नोमान हाशमी एक सहाफ़ी हैं और आप सुबह से हमारी रिपोर्टें सुन रहे हैं सुहेल अंजुम की, जो कि सूरत हाल के बारे में है दिल्ली की। तो लीजिए हम नोमान साहब से पूछते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है। जी नोमान साहब,
देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिकन एम्बेसी में जो उन्होंने मीडिया को जो मुखातिब किया, उसमें बाहर की मीडिया थी और इंडियन मीडिया भी थी। उन्होंने कई सवाल किए डोनाल्ड ट्रंप से और दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करीब 8-10 इलाकों में जो फसादात फूट पड़े, जो दंगे हुए हैं, उसको लेके भी सवाल किया गया। उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनको इस बात की इल्म नहीं है हालात को लेकर के। साथ ही सीए पे क्वेश्चन किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स एक्ट को लेकर के, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है। तो जाहिर है, और दौरे से पहले उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि कोई बड़ा डील नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से एक बहुत ही एक इवेंट, एक गाला इवेंट जैसे होता है वैसा, जो जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, मिस्टर मोदी का खास स्टाइल है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट को लेकर के अहमदाबाद में जिस तरह से काफी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जो उन्होंने बनाया अहमदाबाद में 1 लाख के ऊपर का कैपेसिटी का, वो पूरा बड़ा होता है, रास्ते में 20 किलोमीटर की सड़कों के दोनों तरफ हजारों लोग, लाखों लोग थे, वो जैसे वेलकम कर रहे थे। और फिर आगरा में, दिल्ली में, उसको लेकर के काफी अच्छे तासुरात मरतब हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। तो वो उन्होंने करीब $3 बिलियन का डिफेंस डील भी किया और भी डील जो है एग्रीमेंट की उन्होंने बात कही।
इससे पहले कि हम सदर ट्रंप की उस पर करें, क्योंकि आप मौजूद हैं मकाम पे जहाँ पे सारे हंगामे शुरू हुए, तो इस वक्त क्या तादाद है हलाक होने वालों की और क्या तादाद है जख्मी होने वालों की?
देखें, ऐसा है, तकरीबन हलाक होने वालों की तादाद जो है अराउंड 14 है, 14 लोग है। मैं खुद न्यूज चैनल में हूँ, तो जब मैं निकल रहा था तो उस वक्त हलाक होने वालों के जो नंबर थे वो 10-11 थे, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो तादाद बढ़ के करीब 14 के करीब हो गई है हलाक होने वालों की तादाद।
अच्छा।
एक खास पैटर्न होता है दंगे का, और 150 से मोर देन 150 पीपल दे आर एडमिटेड।
तो इसमें इसमें पुलिस अहलकार भी मारे गए थे, तो हाशमी साहब इसमें क्या मुजाहिरीन ने जो जाहिर तशद्दुद जो था मुजाहिरीन की जानिब से भी हथियारों का इस्तेमाल था या नहीं था?
देखें, जो वीडियो फुटेज आया है उसमें तो एक कल का जो वीडियो था उसमें एक लड़का वेल बिल्ट काफी रेड टी शर्ट पहन करके वो पुलिस के सामने पिस्टल से उसने 7-8 राउंड फायरिंग किया।
अच्छा।
बाद में उसका की पहचान हुई, उसका नाम शाहरुख था, वो अरेस्ट हुआ।
अच्छा।
और कल ही एक पुलिस ऑफिसर की भी गोली लगने से मौत हो गई। आया कि ये जो लड़का अरेस्ट हुआ है शाहरुख, उसके गोली से उसकी पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है या नहीं हुई, ये जो है तय नहीं है। लेकिन और भी फुटेज ऐसे आए हैं जिसमें फायरिंग करते हुए जो पुरतशद्दुद, जिसे हम हिंदी अल्फाज में कहें तो बलवा करने वाले लोग, तो वो जो थे फायरिंग करते नजर आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो बलवा हुआ, ये दंगा हुआ
जी,
ये कैसे शुरू हुआ, इसकी वजह क्या रही? देखें, इस पे दो तीन अलग अलग जो है बातें सुनने को आ रही है। एक तो जांच का इंक्वायरी की बात होगी, अगर गवर्नमेंट दिल्ली स्टेट जो है इंक्वायरी कराती है इसको पता करने के लिए कि कैसे ये शुरू हुआ इसके, तो वो मालूम होगा। लेकिन इतना बात तय है कि वहां पे मुस्लिम जो औरतें थी वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी, और जो लड़के थे वॉलंटियर्स थे एंटी जो मुखालफीन हैं CAA एक्ट के, वो लड़के थे जो उनकी हिफाजत के लिए जो रहते हैं, सपोर्ट के लिए रहते हैं, और वहां पे आकर के पहले उनपे पत्थर औरतों पे फेंका गया, ये भी खबर आई। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके सर पे भी पत्थर लगा, वो अपने घर में उसका इलाज चल रहा है। और गाड़ी से आए थे, वो गाड़ी की भी विजुअल आया है, लेकिन पुलिस उन लोग को अरेस्ट नहीं कर पाई और वो कार छोड़ के भाग गए।
अच्छा।
और
तो ये जो प्रोटेस्ट था,
कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर हैं,
हाँ, जी हाँ, जिन्होंने तकरीर की थी,
पहले उनका भी बयान आया था, वो पुलिस DCP के सामने उन्होंने बयान दिया कि अगर जब तक ट्रंप है हम लोग खामोश हैं, अगर ट्रंप चले जाते हैं मेरे प्रेसिडेंट, तो उसके बाद मैं DCP के सामने बोल रहा हूँ कि खुद खाली करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान, चाहे जो भी पार्टी के लीडर दे, ये इश्ताल को बढ़ाने वाला बयान होता है, और किसी लीडर से ये तवक्का नहीं की जाती है कि वो मुल्क में इस के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, अनरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरह का बयान दे, क्योंकि इससे न सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि बड़े पैमाने पे बड़े तादाद में माली नुकसान होता है, जो आज देखने को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 10 इलाकों में वो भी आया है।
तो रुमान हाशमी साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जाहिर है कि एक अरसे से हमें कभी ऐसा नजर नहीं आया कि जो दारुलहुकूमत है इंडिया का, वो इस तरह के हंगामों का मरकज बना हो और इस तरह का तशद्दुद हुआ हो, क्योंकि जो तशद्दुद नजर आया वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं, कश्मीर है, नागालैंड है, और इसी तरह वो इलाके जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हैं, तो आपको कोई मिसाल नजर आती है इससे पहले कि दारुलहुकूमत में इस तरह का प्रोटेस्ट और इस तरह का तशद्दुद हुआ?
जी हाँ, तकरीबन देखिए 30 साल पहले 1984 की बात है
जी।
1984 में जब उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी
इंदिरा
गांधी,
उनका
तो उनके जो है मुहाफिज थे सिख मुहाफिज, उन्होंने गोली जो है उनके कत्ल कर दिया ऑटोमेटिक वेपन से। उसके रिएक्शन में दिल्ली में और दिल्ली समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में फसादात बड़े पैमाने पर फूट पड़े थे। तो दिल्ली में तकरीबन 3,000 सिख जो हैं वो मारे गए थे,
सबसे बड़ा और उनके बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, तो उसके बाद जो फसादात नजर आ रहा है वो कम्युनिटी के बीच में, वो हालांकि बीच में जो VP सिंह की गवर्नमेंट थी उन्होंने बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू किया था, तब भी दिल्ली में कई जगह जो है वो इंतशार क्रिएट हुआ था और कई जगह हमले हुए थे, कई जगह सेल्फ इमोलेशन भी कर लिया था फॉरवर्ड कास्ट के लड़कों ने, ये करके कि भाई रिजर्वेशन से नौकरियों पे हम लोग का असर पड़ेगा, काबिलियत की बुनियाद पर नौकरी जो है वो मिलेगी नहीं
जी।
और रिजर्वेशन में बैकवर्ड कास्ट के लड़के अगर कम मार्क्स भी लाते हैं तो उन्हें जो है नौकरी मिलेगी, प्रोटेस्ट में सेल्फ इमोलेशन भी किया था।
अच्छा,
खुद को भी आगे लगाई थी। लेकिन कम्युनिटी वाइज इंटर रिलीजन जो क्लैश है वो 1984 के बाद दिल्ली में
नहीं देखने में। मैं यहाँ पे रुमान साहब आपकी अपने मेहमान से तारुफ करवाना चाहूँगी। ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे जाने पहचाने एनालिस्ट हैं और मशरिक़ वस्ती के और हमारे खित्ते के उमूर के माहिर हैं। तो आप भी हमारे साथ आइए, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कश्मीर पे मैं बात करना चाहूँगी। पहले तो ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का प्रोग्राम में। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आज उन्होंने कहा सदर ट्रंप ने कि वो कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी करवाना चाहते हैं, और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए खासी खुशाइन तवक्कुआत का इजहार किया कि पाकिस्तान जो है वो अमन के क़याम की कोशिश कर रहा है और हमारा दोस्त है। थोड़ा सा बताइए कि इस ये दौरा किस लिहाज से आपको इंडिया का पहले जो सदर ट्रंप के दौरे थे उनसे मुख्तलिफ नज़र आता है या मुमासिल नज़र आता है?
देखिए, सबसे अहम बात यह है, जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो एक फंडामेंटल किस्म की रिलेशनशिप है, जिसकी बेसिस जो है वो अमेरिका की ईस्ट एशिया और पैसिफिक पॉलिसी है, और उसके साथ साथ साउथ एशिया की जो स्ट्रेटजी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। उसको देखते हुए यकीनन तौर पर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो ये चाहेंगे कि जिस हद तक हो सके इस इलाके में एक रेप्रोशमेंट सी पैदा हो जाए, कुछ डिग्री ऑफ पीस पैदा हो जाए, ताकि उनकी जो बेसिक स्ट्रेटजी है एशिया और पैसिफिक की तरफ उस पर बुरा असर ना पड़े, जो कि आपको मालूम है कि वो बेसिकली वो डिफाइन की जाती है चाइनीज अमेरिकन रिलेशन के साथ। तो उसी को देखते हुए ये तमाम के तमाम जो आप बयानात सुन रहे हैं, याद रहे कि ये मैं कहता चलूं ये बयानात हैं, ये पॉलिसीज नहीं, तो इनमें ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत जरूरी है। ये बयानात दिए गए हैं लेकिन ये पॉलिसी आइडेंटिफाई नहीं करते, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेपरेट होती है, और जरूरी नहीं कि ये जो बयानात हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनका मकसद ये है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी जो लीनिंग हिंदुस्तान की तरफ हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान को एडवर्स किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का मुकाबला करना पड़े, तो उसको देखते हुए ये बयानात दिए गए हैं। अब जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक हो जाता है, पाकिस्तान और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो साउथ एशिया के अलावा मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की तरफ चली जाती है, जिसमें खास तौर पर अफगानिस्तान शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये जो बैलेंसिंग है इसको आप एक स्ट्रेटेजिक बयानात के मुताबिक ही सोचिए, इसको पॉलिसी के बेसिस पे ना देखिए।
जी अच्छा, ज़ुबैर साहब हसबे वादा अब तो आप हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम के अख्तिताम तक, और इसी तरह रुमान हाशमी साहब भी, लेकिन एक नौजवान हमारे साथ हैं, इनका शादाब नाम है और बहुत देर से ये मुंतज़िर थे और दो दफ़ा फ़ोन डिस्कनेक्ट भी हुआ। तो मैं थोड़ा सा शादाब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये मुजाहरों में शामिल हैं जो एक प्रोटेस्ट है एहतजाज में, मुजाहरे नहीं बल्कि एहतजाज में। शादाब थोड़ा सा बताइए कि आपके इस एहतजाज का क्या मरकज़ है और किस हद तक ये पुरअमन है, या ये कि इसमें कोई पोलिटिकल लोग भी शामिल, आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
देखिए, जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये पहले दिन से ही पूरा मन है। हमारे प्रोटेस्ट में कभी भी इतने दिन हो गए, 70 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक शाहीन बाग से कोई भी ऐसी एंटी सोशल या एंटी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हुई है, बल्कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को लिया गया है। लेकिन जहाँ पर हमारे चहीते जो होते हैं ना ठेकेदार गवर्नमेंट के, वो बात कर देते हैं और बोल देते हैं कि खाली कर दो और उसके बाद तबाही मच जाती है, और वही तबाही अभी दिल्ली देख रहा है।
अच्छा, तो अब ये जो लोग मारे गए हैं जिन जुलूसों में या जलसों में, उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे आपके, या ये आम प्रोटेस्ट करने वाले थे?
देखिए ये अभी तक कंफर्म, मैं अभी तक पूरा कंफर्मेशन में नहीं हूँ कि इसमें कौन स्टूडेंट्स हैं और कौन लोकल्स हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक कहा जा रहा है कि लोकल्स लोग ज्यादा हैं जो इंजर्ड हैं।
अच्छा, तो आप शादाब हमारे साथ रहिए, हम असल में बात कर रहे हैं एक ज़रा ब्रॉडर जो है नज़रिए के साथ भी, कि सदर ट्रंप का जो दौरा था उस वक्त ये सारे हंगामे हुए हैं। तो मैं ज़ुबैर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, उसके बाद रुमान साहब से ज़ाहिर है कि जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर राय वो दे सकेंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ सारा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये प्लान किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले आलोक साहब हमारे साथ थे, उनका ये कहना था कि ये प्लान ही सदर ट्रंप के दौरे के लिहाज से किया गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ?
देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। इस वक्त मेजोरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे उनको दो तरीके से ही देखा जा सकता है। एक तो ये कि माइनॉरिटीज जो हैं, जिनमें खासतौर पर मुसलमान शामिल हैं, वो किस हद तक अपने राइट्स को हासिल करने के लिए कामयाब हो सकते हैं। अगर वो पीसफुली नहीं हो सकते तो फिर वो एहतजाज करते हैं। दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी है वो नॉर्मली इस चीज को इस तरीके से देखेगी कि ये एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है और इस डेमोक्रेटिक डिसीजन के खिलाफ जो माइनॉरिटी काम कर रही है उसको सपोर्ट कहीं और से आ रही है, जिसकी वजह से कर रही है, वरना वो ना करें। तो देखिए, ये एक बेसिकली पर्सेप्शन की बात होती है, इसे आप कह लीजिए मोटिवेशनल, कि जो आपका मोटिव है उसकी बेसिस पर आप अपने जो अजम्पशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और अपने कंक्लूजन निकालते हैं। तो जहां तक मैं देख सकता हूँ, ये जो इस वक्त हिंदुस्तान में खासतौर पर जो दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसकी बेसिकली दो वजूहत हैं। एक तो यकीनन क्योंकि ये सदर ट्रंप का दौरा है और उसमें यकीनन तौर पर ग्लोबली आपको एक्सपोजर मिल सकता है, तो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है इनकी बैकग्राउंड बड़ी लंबी है और बड़ी पुरानी। अब ये जैसे कि आपने देखा कि वहां पर सिट इन जो डेमोन्स्ट्रेशन पिछले 6 महीने से चल रही है, तो इसको उसी का एक हिस्सा समझना चाहिए। इसका क्या असर होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मौकों का इंतजार करते हैं और ये बहुत अहम मौका है। इस वक्त तो अपने चैलेंजेस को और अपने इश्यूज को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए हो रहा है।
अच्छा, तो ये जो मजहबी आज़ादी की बात की सदर ट्रंप ने, उन्होंने जोर दिया भारत पे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बिल है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, CAA जो है। तो जाहिर है कि बात तो सारी मजहबी की बुनियाद पर है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस पूरी बात में फिर?
ऑफ कोर्स ये कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, मैं भी पहले अर्ज कर रहा था कि बयानात और पॉलिसीज में बड़ा फर्क होता है। ये सदर ट्रंप के जो वहां बयानात हैं इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो एक उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पैदा हो गई है मोदी साहब के साथ, या अमेरिकन इंटरेस्ट जो है हिंदुस्तान में उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट देने में कोई बुराई नहीं। वो इसको क्योंकि पॉलिसी का हिस्सा नहीं समझते, तो इसलिए वो इस किस्म के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। इन अनाउंसमेंट को इतनी अहमियत न दीजिए दो वजह से। एक तो ट्रंप साहब बहुत इस किस्म की बातें करते हैं जिनका फैक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और दूसरी बात यह भी है कि उनकी भी जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से गवर्नमेंट को तकलीफ पहुंचती है कि उनकी और गवर्नमेंट के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको सपोर्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर हिंदुस्तान को वो अपने साथ डिफेंस बेसिस पर साथ लाना चाहते हैं और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो जो स्ट्रेटेजिक कलेबरेशन है चीन के खिलाफ उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो ये यकीनन इस किस्म की स्टेटमेंट बड़ी फायदा देगी। दुरुस्त हो ना हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, तो मैं इस पे रुमान हाशमी साहब से भी कमेंट्स चाहूँगी इसी सवाल पर, लेकिन इससे पहले हमारी एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हुई हैं, नताशा भारद्वाज साहिबा, प्रोमिनेंट फिल्म मेकर हैं इंडिया के, आप लोग खासतौर रुमान साहब वाकिफ़ होंगे। और ये एक प्रोजेक्ट है इनका कारवाने मोहब्बत के नाम से। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने ये जितने भी मजहब की बुनियाद पर जैसे लिंचिंग के वाक़ात थे या किसी भी तरह के इम्तियाजी सलूक का माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि सिविल लिबर्टीज़ के लिए काम करती हैं। तो नताशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा नताशा का फोन फिर डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन रुमान हाशमी साहब मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जिसका जुबैर साहब ने जवाब दिया था, यानी ये कि ये जो मजहबी आज़ादी के मामले पे उन्होंने बात की वज़ीर आज़म मोदी से, लेकिन उन्होंने शहरियत बिल से मुतालिक अपनी राय नहीं दी, तो आपके ख्याल में कुछ दबाव पड़ेगा भारतीय हुकूमत पर शहरियत बिल के बारे में इस दौरे?
देखिए ऐसा है, ये मामला जो है चाहे वो सीए का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, ये सीए भारतीय पार्लियामेंट ने पास किया है और ये प्योरली इंडिया का भारत का अंदरूनी मामला है
जी।
और एक बात मैं वाजा कर दूं कि ये इसके लिए सीए के प्रोटेस्ट में जो शुरू हुआ शाहीन बाग का धरना और उस तरह से हिंदुस्तान में कई 100 जगह वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, कैंपिंग चल रहा है, इसमें मुस्लिम जो औरतें हैं वो आगे आगे हैं, लेकिन ये अकेला ये लड़ाई मुसलमानों की मैनोरिटीज का नहीं है और इस लड़ाई में सिर्फ मैनोरिटी शामिल नहीं है। आप शाहीन बाग का ही अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो शाहीन बाग में जो हिंदू कम्युनिटी से जो लिबरल पीपल हैं, चाहे वो वीमेन्स हो चाहे वो मेन्स हो, वो शामिल हैं, सिख शामिल है, वो लंगर चला रहे हैं। एक सिख एडवोकेट 3 फ्लैट उनका दिल्ली में है, उन्होंने अपनी एक फ्लैट बेच दिया और फ्लैट बेच करके वो एक महीना से लंगर चला रहे हैं, 3 टाइम का खाना खिला रहे हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर जो भी आते हैं, तो सभी कौम के लोग हैं। अभी मेरी बात हुई थी कल ही एक खातून से, पूरा नाम तो उनका जिक्र नहीं करूंगा, शर्मा है मतलब कि पंडित है, ब्राह्मीण है, वो बिजनौर से, मैंने पूछा आप यूपी वेस्टर्न यूपी के बिजनौर से वो यहाँ आई हुई हैं प्रोटेस्ट में शाहीन बाग, हमने कहा कि आप कैसे आए आपके फैमिली में, नहीं मना किया हमने कि यूपी में, तो मेरा यूपी में ज्यादा सख्त है वहाँ पे योगी गवर्नमेंट, तो हमें इधर आ गई प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। तो बड़ी तादाद है हिंदू कम्युनिटीज के लोगों की, बड़ी तादाद है सिख कम्युनिटीज की जो सीए को लेकर के अपोज कर रहे हैं, और उसकी वाजा उसकी वजूहात भी है। जब एनआरसी लागू हुआ असम में तो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर, एनआरसी के दायरे में बाहर हो गए, मतलब इंडियन नेशनलिटी में, और फॉरेन टर्मिनल ने उन्हें जो है फॉरनर डिक्लेयर कर दिया। उस 19 लाख में 14 लाख हिंदू बाहर हुए।
जी इस पर मैं क्योंकि काफी डिस्कशंस कराए हमारे सुनने वाले इस मसले से बखूबी वाकिफ भी हैं, मैं दोबारा से जाना चाहूंगी डॉक्टर जुबैर के पास। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये दो तरफा जो मुजाकरात थे इनके, अगर आप मजमूई तौर पर देखें और सदर ट्रंप का अब इलेक्शन ईयर भी है ये, तो इसमें कौन सी सबसे अहम बात कौन सी इस दौरे में सामने आती है और ये किसी तरह से अमरीकी इलेक्शंस पे या सियासत पे असरअंदाज हो सकता है?
ये बहुत लंबा सा सवाल है लेकिन मैं सब कंपनी से जवाब देने की इजाजत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बेसिक मकासद थे इस विजिट के वो ट्रेड इश्यूज पे थे और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होती है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान उनके थे, और उसका तीसरा हिस्सा जो था वो किस हद तक हिंदुस्तान चीन के साथ अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अपनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को कम करके अमेरिका के साथ बढ़ाए, ये कामयाब नहीं हुए और उसकी कई वजूहत हैं। उसकी खास बेसिक वजह यह है कि हिंदुस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर इन चीजों को देख रहा है, उसके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वो यकीनन अपनी इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन को कम नहीं करना चाहता अमेरिका के लिए, क्योंकि उसकी वजह से जबकि हिंदुस्तानी इकोनॉमी बड़ी कमजोर होती चली जा रही है, अगर वो प्रोटेक्शनिज्म को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से ग्रोथ और गिर जाती है, उसके साथ मुश्किल पैदा होती हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि बैलेंसिंग तो कर रहे हैं अमेरिका के साथ, लेकिन ये जानते हैं कि चीन और हिंदुस्तान हमेशा हमसाए रहेंगे और ऐसी कंडीशन में वो कोई ऐसी एक्शन नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिटीरियरेट कर जाए और उसके लॉन्ग टर्म असरात हों। तीसरी बात ये थी कि अमेरिका ये चाहता था कि हिंदुस्तान बड़ी हद तक अपनी जो मिलिट्री कोलैबोरेशन रशिया के साथ है उसको खत्म कर दे और वेपन ज्यादातर वो अमेरिका से खरीदे, वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं और $3 बिलियन का एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। लेकिन दरअसल बात यह रहती है कि इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, क्या हिंदुस्तान वाकई अपनी रिलेशनशिप रशिया और चीन के साथ कम करके अमेरिका के साथ ज्यादा बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अहम बात यह होगी कि पूरे रीजन में किस किस्म की डायलॉग और डायनामिक्स डेवलप होती है और उसके बाद ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, अजय कुमार साहब हमारे साथ हैं, मुमताज़ साफ़ी हैं और तजयकार हैं। अजय कुमार साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हम बात कर रहे हैं एक तो दिल्ली की सूरत हाल पर और सदर ट्रंप के दौरे पर, साथ साथ कि उसके क्या खत्ते पर क्या असरात होंगे। असल में हमने रखा था इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से पूरा प्रोग्राम जो है गड़बड़ सा हो गया है। तो आपसे पहले तो मैं ये पूछूँगी कि दिल्ली में सदर ट्रंप ऐसे वक्त में थे जो बहुत ही एक हंगामा आ रहा है, और तो किसी तरह से क्या आपको लगता है कि ये एम्बेरसमेंट का सबब बनेगी गवर्नमेंट के लिए ये बात कि दारुल हुकूमत में इतना शोर शराबा था? अजय कुमार साहब,
इससे एक बात बड़ी साफ हो गई कि चाहे जो भी इसके ट्रंप को लाके एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया, क्योंकि आप भी कह रही हैं कि एम्बेरसमेंट का सबब बनेगी।
जी हाँ बिल्कुल।
इससे ये बात साबित हो गई कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है और ये किस सूरत में, तो कल तक कश्मीर के हिस्से में तक ही सीमित था, आज वो भारत के कोने कोने को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली की राजधानी है, वहाँ इस तरह के वाकयात का होना, ये सारी चीजें बिना किसी विदेशी साजिश के तो हो नहीं सकती। और ये इसलिए की गई कि जो भारत और अमेरिका,
मैं दरख्वास्त करूंगी अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स, मेरा ख्याल किसी और टेलीफोन से या तो हमसे किसी की लाइन मिल गई, पीछे से आवाज़ आ रही है, तो क्योंकि आप सब लोग मौजूद हैं इस डिस्कशन में एक साथ, तो जरा थोड़ा सा अगर खामोश रहें सब लोग। जी अजय कुमार साहब आप बोलिए।
जी, जो यहाँ मंच से बात कही गई कि आतंकवाद के खिलाफ के मुहिम में भारत और अमेरिका एक साथ है, स्वाभाविक है कि ये आतंकवाद पोषित करने वाले देश और रहनुमा, और खास करके देश से भी मेरा उससे आगे जाना कुछ विचारधारा पे सीधे तौर पे हमला हुआ, वो उनको कहीं से अच्छा नहीं लगेगा, उनके अस्तित्व का सवाल है, और उसी का परिणाम आज हम दिल्ली में देख रहे हैं। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 70 दिनों से एक जगह शाहीन बाग में CAA के विरोध में जलसा चल रहा था, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जैसे ही उसके समर्थन में कुछ लोग निकले तो माहौल ये हो गया। ये कहीं ना कहीं अति गंभीर बात है, और भारत की बढ़ती हुई ताकत और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिस तरह से वो देश की अर्थव्यवस्था को एडजस्ट करना चाहते हैं, उससे अभी एक साहब यहाँ फरमा भी रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं उनको ये तेज से अच्छा नहीं लग रहा।
अच्छा, अजय कुमार साहब हमारे एक मेहमान और हमारे साथ हैं, आप ही ने जो अभी बात की, भारत भूषण साहब हमारे साथ हैं। भारत भूषण साहब, अजय कुमार साहब का ये कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब शाहीन बाग में कई हफ्तों से बल्कि 70 दिन से प्रोटेस्ट जारी था, कोई वाकया नहीं हुआ, तो ये जो आज के दिन इतना हंगामा हुआ, ये इस बात की निशानी है कि इसमें दूसरे मुल्क का हाथ है किसी का, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
किसी को मालूम नहीं है, खाली स्पेकुलेशन करने से क्या फायदा कि किसी मुल्क का हाथ है, क्या पता इसी मुल्क में किसी का हाथ हो, ये दिखाने के लिए कि एक कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, या ये भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स में डिफरेंसेस हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, पर ये बिना एविडेंस के कह देना कि पड़ोसी देश का हाथ है इसमें, ये गलत है मेरे ख्याल से, इंतजार करना चाहिए,
तो
इन्वेस्टिगेशन होगा, पता लगेगा।
तो मगर आपके ख्याल में इसकी यानी ये प्लान था आज, या ये इतने दिन से कोई लावा पक रहा था वो आज फूट निकला, या वाकई ये प्लान करके, क्योंकि बहरहाल इसमें एक पहलू ये बैन अल-अक़वामी तवज्जो तो आई ना इस तरफ, पूरे गैर मुल्की मीडिया तो इसको कवर कर रहा है ना,
कर रहा है, भारत का मीडिया भी कवर कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ इसकी शुरुआत हुई इतवार की रात को। रूलिंग पार्टी का एक डिफीटेड कैंडिडेट है, तो बहुत ही वाहिया किस्म का कैंडिडेट है कपिल मिश्रा, उसने पुलिस डिप्टी पुलिस कमिश्नर के साथ में खड़े होकर धमकी दी कि अगर जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सड़क से नहीं हटे 3 दिन के अंदर, तो वो कानून खुद हाथ में लेकर उन लोगों को हटाएंगे। पुलिस को उसको उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाला डिप्टी कमिश्नर उसके साथ में खड़े होकर सुन रहे हैं सब कुछ। अगर कोई कह रहा है कि मैं पब्लिक पीस को तोड़ूंगा, दंगा करवाऊंगा, तो आपको उसी समय उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये प्लान था तो ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसका प्लान लगता है ना। उन्होंने आज तक अभी तक अपने इस कैंडिडेट को, इस वर्कर को क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, और दिल्ली पुलिस ने उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? 23 लोग मर चुके हैं अब तक, तो आप पकड़िए ना। तो ये कहते हैं पड़ोसी देश का हाल सबसे आसान है ना, फिर तो सारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रही नहीं जाती।
अच्छा कुमार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप मैं जानना चाहूंगी,
जो हमारे यहाँ पे साथी कह रहे हैं साफ कह चुकी है, इस इलाके के सांसद कह चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, उन्होंने ऐसा किया तो कार्रवाई होगी, लेकिन इस बिना
सरकार आपकी है पकड़ लीजिए ना, आपको
माफ कैसे किया जा सकता है? इसकी जिम्मेवारी दूसरे लोगों को भी तो लेनी पड़ेगी। आप एक गलती के लिए क्या आप पूरे देश में को आग में झोंक देंगे? अगर कपिल मिश्रा ने कुछ गलत भी किया तो क्या आप देश में आग नहीं फैला देंगे? किस संविधान के, राष्ट्रीय झंडे के को आप ले करके अभी तक 70 दिनों से शाहीन बाग में बैठे थे, उसी राष्ट्रीय झंडे को जलाने का काम करेंगे? ये कपिल मिश्रा का नाम कह करके और भाजपा का नाम कह के ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता। माफ कीजिएगा भरत भूषण साहब।
अजय रुमान हाशमी साहब, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं, तो आप एक मिनट।
मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा
जी।
ऐसा है कि अगर विदेशी हाथ है, पड़ोसी मुल्क का हाथ है, तो फिर दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? हमारे होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आगजनी हुई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, दुकानें जलाई गई है, सड़कों पे लोगों की लिंचिंग हुई है, सड़कों पे लोग मारे गए हैं, ऑटो चलाने वाला मारा गया, ठेला करने वाला मारा गया, और कॉमन पीपल मारे गए, आम लोग मारे गए, और पुलिस तमाशाबीन की तरह खड़ी है। क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही है? पैरामिलिट्री क्या कर रही है? सीआरपीएफ पैरामिलिट्री है, सीआईएसएफ है, ये क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया है? और ऐसे लोगों को जो जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, जैसे कि हमारे साथी कपिल मिश्रा का जिक्र किया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा, अच्छा हमारे एक और दोस्त जो ये कह रहे हैं कि सीएए के सपोर्ट में जब जुलूस निकला तब हंगामा हुआ, तो ये बात जो है याद दहानी के लिए मैं कह दूं कि सीएए के सपोर्ट में आज से 10 दिन पहले भी जुलूस निकला है। ये जुलूस 12 दिन
मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका रुमान हाशमी साहब। आखिरी हमारे जी शुक्रिया। और जुबैर साहब, एक दूर यहाँ अमरीका से देखते हुए, आप खित्ते के माहिर हैं, आपको इस वक्त भारत की अंदरूनी सूरत हाल पे अगर आप कुछ कहना चाहें, आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ?
देखिए, भारत के अंदर जो अंदरूनी सिचुएशन है उसका असर बिल्कुल इनडायरेक्ट किस्म का असर होगा। अगर भारत के अंदर इस अंदरूनी सिचुएशन की वजह से इंस्टेबिलिटी फैलती है और उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस में अमरीकी इंटरेस्ट जो है उस पर बड़ा असर पड़ता है, और फिर पॉलिसीज को रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए देखना जरूरी है कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप पैदा होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे देखे जाएंगे। अभी तो इसके मुताबिक कोई क्लियर कट पोजीशन सामने नहीं आए।
आलोक वार साहब, सिर्फ 30 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि बिल्कुल हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आलोक साहब।
मैडम, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये
कानून है ये पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ है, जैसा अभी हाशमी साहब ने भी कहा। तो क्या ये चंद लोगों को अधिकार है 1,25,00,000 की आबादी में कि वो एक जगह धरने पर बैठ के और पार्लियामेंट ने पास किए हुए किसी भी कानून को वो कहें कि रद्द करा देंगे हम?
मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, जुबैर इकबाल साहब, रुमान हाशमी, भारत भूषण साहब, अजय कुमार साहब, आलोक वार साहिबान और इससे पहले जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल थे। शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। भारत के दारुलहुकूमत नई दिल्ली में इन दिनों एक ऐसी नुमाइश हो रही है जिसमें वादी सिंध में 5,000 साल पुरानी खाने की रिवायत को उजागर किया गया है। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि ये एक तरक्की याफ्ता तहजीब थी और इसके शहर बहुत तरक्की याफ्ता थे। नुमाइश में खाने पीने की ऐसी अशिया का तस्वुर पेश किया गया है जो उस दौर के लोग इस्तेमाल करते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अंजना पसरीचा ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। तफसीलात के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में नुमाइश के एक हिस्से में एक मिट्टी के बर्तन में काबली चने को धीमी आंच पर उबलते दिखाया गया है। ये मामूली नौयत का खाना नहीं है, इसे अनाज और सब्जियों के साथ बनाया जा रहा है, जिसे वादी सिंध की तहजीब के दौर में 5,000 साल पहले आबाद लोग इस्तेमाल में लाते थे। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं, ये तहजीब शिमाल मगरबी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फल फूल रही थी और इसके आसार पाकिस्तान के सूबे सिंध में मोजडारो के मकाम पर अब भी देखे जा सकते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन की तहकीक से पता चलता है कि उन लोगों की खुराक में बेशतर वो चीज़ें शामिल थीं जो जनूबी एशिया में अब भी इस्तेमाल की जाती हैं। नुमाइश की क्यूरेटर सोमी चटर्जी कहती हैं,
There's a lot of food which have continued. Everything to do with our innate taste. It's similar. For example, chawal, the rice or the roti, it's only become more and more soft.
बहुत से खाने ऐसे हैं जो अब भी मकबूल हैं और जिनका ताल्लुक हमारे फितरी जायके से है और जो हमारी जिंदगियों के लिए ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर चावल और रोटी। अब ये ज़्यादा नरम और ज़्यादा नफीस हो चुके हैं और इसकी वजह यह है कि हमारे दांत भी कमज़ोर हो चुके हैं। ये अल्फाज थे नुमाइश की क्यूरेटर सोमी चटर्जी के। शेफ सवियाची गोराई का कहना है,
एवरीथिंग इज पाउंडेड थ्रू स्टोन, एवरीथिंग इज कुक्ड ऑन आइदर हॉट स्टोन और ऑन टेराकोटा।
खाना तैयार करने के बर्तन वगैरह मसलन मिट्टी की हांडियां सादा लेकिन जदीद अंदाज की थी। नुमाइश की क्यूरेटर सोमी चटर्जी के अल्फाज,
द बेस वाज थिकर सो दैट इट डिडंट क्रैक, इट हैड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सैंड सो दैट इट वुड नॉट हीट अप टू फास्ट एंड चार द फूड एट द बॉटम, येट चार्ड।
इसका पैंदा दबीज हुआ करता था ताकि पकाते वक्त उसमें दरार न पड़े। ऐसे बर्तन की तैयारी में रेत की कुछ इतनी मकदार शामिल होती थी जिससे ये जमानत मिलती थी कि यह कम वक्त में गर्म न हो जाए, जिसकी बिना पर बर्तन में निचले हिस्से का खाना जलने का खदशा होता था। लोग दर्जा हरारत को कम बेश भी कर सकते थे और जरूरत के मुताबिक आग मुहैया की जाती थी। ये अल्फाज थे सोमी चटर्जी के। माहिरीन का कहना है कि कदीम तहजीब में खाने पीने की रिवायात में जदीद ज़माने के लिए भी बहुत सबक है। उस ज़माने में सब्जियों के छिलके नहीं उतारे जाते थे, खानों की तैयारी धीमी आंच पर की जाती थी और इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को कभी भी खाने से जुदा नहीं किया जाता था। ये बातें आज की ज़रूरियात के लिहाज से उतनी ही अफादियत रखती हैं। इस तरह खानों की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है और उन्हें ज़्यादा देर तक महफूज रखा जा सकता है और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। नुमाइश में ऐसे स्टॉल्स भी हैं जहां दालों के स्टू और गर्म पत्थरों पर कच्चे केले की तरकारी और बाजरे से बनी पुडिंग बनते दिखाया गया है। माहिरीन इस जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि नुमाइश में तैयार किए जाने वाले खानों में टमाटरों और आलू का इस्तेमाल नहीं दिखाया गया। उसकी वजह साफ जाहिर है और वो ये कि उस अहद में ये चीज़ें दस्तियाब ही नहीं थीं اور بہت بعد میں متعارف ہوئیں۔ ایک طالبہ سبرامنیم کہتی ہیں،
I feel that the way of cooking that we have developed is coming from theirs.
میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے جو طریقے سیکھے ہیں ان کا تعلق اسی زمانے قدیم سے بنتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک طالبہ مدھیوی کے۔ نمائش میں جہاں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے، وہاں ان کے کھانوں سے زمانے قدیم کے ساتھ رشتوں اور تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔